नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
छत्तीसगढ़ में महादेव बेटिंग ऐप का मामला गर्मा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग की एक चुनावी सभा में इस मामले का जिक्र किया। इससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक कथित कैश कुरियर को पकड़ा था और ये दावा किया था कि उस व्यक्ति ने इस केस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया है। क्या है ये पूरा मामला और चुनावी मौसम में इसके गर्माने का क्या मतलब है? छत्तीसगढ़ की चुनावी राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है, जानेंगे पूनम पांडेय से, जो नवभारत टाइम्स की विशेष संवाददाता हैं और इस वक्त छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन कवर कर रही हैं। पूनम जी, पहले तो ये बताएं कि ये महादेव बेटिंग ऐप का मामला है क्या, ये क्या इसमें हो रहा है?
जी, ईडी महादेव बेटिंग ऐप जो ऐप है उस सिंडिकेट की जांच कर रही थी और अभी ईडी ने दावा किया है कि उसने असीम दास नाम के कैश कुरियर को पकड़ा है 5 करोड़ से ज्यादा रकम के साथ। और ईडी ने ये दावा किया है कि असीम दास से जब पूछताछ की जा रही थी तो पूछताछ के दौरान ही उसने ये खुलासा भी किया कि जो महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ये ईडी का दावा है कि पूछताछ में ये कहा गया है। और क्योंकि ये जो खुलासा हुआ है और ईडी ने जो ये बात कही है ये चुनाव से ठीक पहले कही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं 2 चरणों में। पहले चरण में 7 नवंबर को वोटिंग होनी है 20 सीट के लिए और दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। तो पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले इस तरीके का बड़ा खुलासा ईडी का करना, और बीजेपी ने उसको हाथों हाथ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा में इसका जिक्र किया है कि भूपेश बघेल ने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा और लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस सरकार पर, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर करप्शन का आरोप लगा रही है, बीजेपी से एक बड़ा मुद्दा बना रही है। और अब ईडी का ये खुलासा करना चुनाव से ठीक पहले, तो देखना होगा कि किस तरीके से समीकरणों को बदलता है।
जी, इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या कांग्रेस की ओर से क्या कहा जा रहा है?
जी, भूपेश बघेल का कहना है कि जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले ईडी इस तरीके की बातें कर रही है तो उससे साफ है कि बीजेपी मुझसे डरी हुई है और मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और सीएम ने पॉलिटिकली ये भी कहा कि जिस तरीके से बीजेपी पहले हिमंता बिश्व शर्मा पे आरोप लगाया करती थी, अजीत पवार पे आरोप लगाया करती थी, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए तो वे एकदम साफ सुथरे हो गए। और भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि अगर मैं किसी से भी बोलकर, किसी पे भी दबाव डालकर या किसी भी तरीके से पीएम का नाम लेने को कहूं किसी घोटाले में तो क्या ईडी जाकर पीएम से पूछताछ करेगी? तो भूपेश बघेल लगातार ये कह रहे हैं कि ये उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास है, चुनाव से पहले ये एक तरीके से राजनीति की जा रही है उनकी छवि को धूमिल करने के लिए।
जी, ये पूरा मामला, ईडी का दावा है कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है इसमें, और ये जो इसके प्रमोटर हैं सो कॉल्ड इस महादेव ऐप के, ये सौरभ चंद्राकर और उसका जो साथी है रवि उप्पल, उस पर ये आरोप है। वो सब दुबई से ये सब काम करते रहे हैं और बेनामी बैंक खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। और जिस तरह प्रधानमंत्री ने मामला उठाया है और जैसा आप कह रही हैं कि अब ये मामला क्या लगता है आपको, ये चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? 7 नवंबर को पहली आप कह रहे हैं कि वोटिंग होने वाली है।
मैं करीब एक हफ्ते छत्तीसगढ़ में अलग अलग इलाकों में गई, वहां घूमा, लोगों से बात की, तो उस समय भी करप्शन को लेकर बीजेपी बात कर रही थी क्योंकि वहां एक जो घोटाला हुआ है CGPSC, मतलब छत्तीसगढ़ का जो PSC भर्ती में घोटाला हुआ है, उसमें ये आरोप है कि तमाम बड़े लोगों के, पावरफुल लोगों के, लोगों को उसमें भर्ती किया गया। तो बीजेपी इसको लगातार मुद्दा बना रही थी, भ्रष्टाचार को एक तरीके से, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भूपेश बघेल सरकार को घेर रही थी और अभी भी लगातार घेर रही है। और उसके साथ ही ईडी के करप्शन को भी अगर जोड़ दें तो हाँ, ये एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये वोटिंग पर कितना असर डालेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां छत्तीसगढ़ में जो मुद्दे हैं, किसानों को क्या मिल रहा है, लोगों से क्या वादे किए गए हैं और क्या सरकार युवाओं के लिए क्या करेगी, रोजगार कितना मिलेगा, धान की क्या कीमत होगी, इस तरीके के मुद्दे वहां ज्यादा हावी दिखते हैं। और वैसे भी हमने पहले के चुनाव में भी, अलग अलग स्टेट इलेक्शंस में भी देखा कि करप्शन का जो मुद्दा लास्ट मिनट में जिस तरीके से आता है वो बहुत ज्यादा वोटर को प्रभावित करता नहीं है, क्योंकि एक तरीके से जब पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये मानते हैं कि करप्शन की इतनी बात होने लग गई है राजनीति में, कि वो वोटर एक तरीके से इम्यून हो गए हैं करप्शन को लेकर, तो उन्हें लगातार करप्शन की जब बात होती है वो सुनते हैं। तो अब ये वोटर ने अगर मन बना लिया है किसी एक पार्टी को वोट देने का, तो ये ईडी का खुलासा कितना चेंज करेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लगता नहीं है कि एकदम से, अगर समीकरण जो है एकदम से समीकरण तो ये नहीं पलट सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के और मुद्दे काफी हावी हैं।
जी, आपने बहुत दिलचस्प बात कही। इस देश ने जो है लोकपाल के लिए बहुत बड़ा आंदोलन देखा था, सरकार बदल गई थी, और आप कह रहे हैं कि अब पॉलिटिकल पार्टीज भी मान रही हैं कि करप्शन का मामला इतना ज्यादा हो गया है कि वोटर जो है इससे इम्यून हो गया है। आप पूनम जी, आपने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया है इस फर्स्ट फेज में, जहां वहां पोलिंग होने वाली है, वहां कैसा ये जो कांग्रेस और बीजेपी जो वादे कर रही हैं दोनों पार्टियां, जनता पे किस तरह का वहां रुझान, किस तरह का मूड बन रहा है, लोगों का क्या दिख रहा है?
जी, पहले चरण में जो वोटिंग होनी है वो 20 सीटों पर होनी है, और उसमें बस्तर रेंज की 12 सीटें भी आती हैं। पूरा आदिवासी इलाका है और ज्यादातर नक्सल प्रभावित इलाका है। और कुछ समय पहले ही ये एक जानकारी आई है कि नारायणपुर में, जो बस्तर रेंज में ही आता है, नारायणपुर के एक धौड़ाई गांव में बीजेपी नेता की, जो वहां के एक लोकल नेता है रतन दुबे, जब वो प्रचार कर रहे थे, प्रचार के दौरान ही किसी ने, जो एक ग्रामीण की वेशभूषा पहनकर आए, मंच पर ही कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी। तो ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों ने उनकी हत्या की है, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका भी है, और बस्तर पूरे रेंज में वहां के जो प्रशासन है वो सिक्योरिटी को लेके बहुत कंसर्न है। लगातार किस तरीके से सुरक्षित तरीके से चुनाव कराए जा सके, इसकी तैयारी हो रही है। और ऐसे में ये घटना भी काफी अहम है, क्योंकि 7 नवंबर को बस्तर की 12 सीटों के लिए पोलिंग होनी है, और अभी उन सभी 12 सीटों पर कांग्रेस है। तो एक तरीके से लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के लिए ये चुनौती तो होगी ही कि पूरी की 12 सीटें वो रिपीट कर ले, इसलिए बीजेपी हो सकता है वहां कुछ गेन करे। और वहां आदिवासी इलाकों में जो वनोपज होती है, जो वनों में के जो भी उत्पाद होता है, तेंदूपत्ता, इमली या और भी जो उत्पाद है, उनकी कीमतों को लेकर मुद्दा बन रहा है, वहां लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र निकाला, इससे पहले बीजेपी ने अभी तक पूरे चुनाव प्रचार में कोई वादा नहीं किया था, लेकिन अपने घोषणा पत्र में एक तरीके से बहुत सारे बीजेपी ने वादे किए हैं। तो उसमें से एक वनोपज की कीमत बढ़ाने का भी वादा बीजेपी ने किया है। तो ये बस्तर की आदिवासी सीटें हैं वहां का, क्योंकि मुख्य उनका इनकम सोर्स वनोपज ही है, तो वहां इसका असर हो सकता है। हालांकि कांग्रेस पहले से ही ये वादा कर चुकी है कि वो वनोपज की कीमत बढ़ाएंगे, और कांग्रेस की सरकार में कई बार इसकी कीमतें बढ़ी भी हैं। तो किस तरीके से लोग दोनों की तुलना करते हैं, किस पर भरोसा करते हैं, ये देखना होगा। और पूरे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कुल 90 सीटें हैं, 90 में से 50 ऐसी सीटें हैं जो जहां फार्मर्स, किसान बहुत बड़ा असर डालते हैं। इसीलिए शायद पहली बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धान की कीमतों का भी जिक्र किया, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धान की कीमत बढ़ाने की बात कही, और ये कहा है कि वो 1 एकड़ में से 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और 31 रुपए की कीमत से खरीदेंगे और एकमुश्त खरीदेंगे। तो जो एकमुश्त है ये तो हो सकता है लोगों का रुझान थोड़ा बदले, क्योंकि अभी तक जो सरकार है वो जो भी भुगतान करती है वो 4 किस्तों में करती है, तो किसानों को एक मुश्त वो रकम नहीं मिल पाती है। दूसरा, अभी 20 क्विंटल 1 एकड़ से 20 क्विंटल की खरीद होती है और 2800 रुपए करीब उसके मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी ये वादा किया है कि वो 3000 रुपए तक देगी। तो लगभग कांग्रेस और बीजेपी का एक तरीके से इसमें वादा है धान की कीमत को लेके। और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी हर साल 10,000 रुपए देने का वादा किया है वित्तीय सहायता के तौर पर। कांग्रेस सरकार करीब 8,000 रुपए अभी वो दे ही रही है, लेकिन जो कांग्रेस का एक वादा है वो बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं है, और जिसकी चर्चा भी काफी किसानों के बीच में है, वो है किसानों की कर्ज माफी का। पिछले बार भी कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादा किया था कि वो किसानों की कर्ज माफी करेगी, और हमने जितने भी किसानों से बात की तो उनको उनकी कर्ज माफी हुई है, उन्हें उसके पैसे मिले हैं, और किसानों का लगातार ये कहना था कि अच्छा हुआ कि कर्ज माफी हुई और आगे भी होनी चाहिए। तो एक तरीके से कांग्रेस ने जो ये दांव खेला है, क्योंकि इससे पहले भूपेश बघेल ने, सीएम ने कहा था कि वो कर्ज माफी एक बार कही है, हम उसको दोहराएंगे नहीं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने फिर ये दांव खेला कि हम कर्ज माफी करेंगे। तो एक बड़ा मुद्दा ये है किसानों के बीच में, और ये 50 सीट इफेक्ट करते हैं, तो ये वहां का अभी बहुत बड़ा मुद्दा दिख रहा है। युवाओं के बीच रोजगार का मुद्दा है और करप्शन का भी मुद्दा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीएस का जो घोटाला है वो युवाओं के बीच उसकी चर्चा है कि अगर यहाँ भी रोजगार नहीं मिलेगा तो इसमें भी करप्शन होगा, तो कैसे होगा, मेहनत करके भी अगर नहीं होगा, तो ये युवाओं के बीच मुद्दा है। और बीजेपी ने उस मुद्दे को छूने की कोशिश भी की है, युवाओं के मुद्दों को छूने की कोशिश की है, और ये भी वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 2 साल के भीतर 1 लाख शास्त्री पद भरे जाएंगे। तो एक तरीके से बहुत से वादे जो है वो दोनों के एक मैच करते हैं। कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उसी तरीके के लगभग बीजेपी ने भी किए हैं। कांग्रेस ने बोला है कि हम केजी से लेके कॉलेज तक की पढ़ाई मुफ्त करेंगे, तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम कॉलेज के लिए जो महीने का ट्रैवल अलाउंस है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए देंगे। तो उसमें थोड़ी आगे पीछे रकम हो सकती है, लेकिन मोर और लेस उनके प्रॉमिस एक जैसे हैं। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का इंतजार नहीं किया। ये बड़ी बात है कि कांग्रेस लगातार घोषणाएं किए जा रही है बिना घोषणा पत्र जारी किए। हर मीटिंग में, हर रैली में, किसी में भूपेश बघेल, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी लगातार कोई ना कोई घोषणा कर रहे हैं। और घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही कांग्रेस अभी तक 17 घोषणाएं कर चुकी है। जिस तरीके से वो वादे कर रहे हैं, लोग किसके वादे पे भरोसा करेंगे? और मैं जितना घूमी छत्तीसगढ़ में, एक वहां की मुझे खास बात लगी कि लोग बहुत गंभीरता से घोषणा पत्र को लेते हैं। नेता क्या वादे करते हैं उसकी पूरी चर्चा करते हैं, उसकी पूरी पड़ताल करते हैं, उस वादे को देख कर वोट करते हैं। मेरी कई महिलाओं से बात हुई जिनका ये कहना था कि वो उस समय बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं किसानों के लिए वो क्या वादे करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया। तो जिस तरीके से जितना अवेयर वोटर्स हैं, जिस तरीके से वो वादे देख रहे हैं, तो देखना होगा कि किसके वादे पे वो ज्यादा भरोसा करते हैं और किसका वादा उनको ज्यादा लुभाता है।
जी, आपने बताया कि रोजगार का मुद्दा है वहां पर, किसानों का मुद्दा है और करप्शन का मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोग सट्टेबाजी के पैसे से अपने घर भर रहे हैं, और मुख्यमंत्री बघेल ने सवाल उठाया है कि मोदी सरकार ने क्या इस महादेव ऐप के प्रमोटरों के साथ डील कर ली है जो इसे अब तक बैन नहीं किया है। तो कुल मिला के आपने जैसा बताया कि ये करप्शन, रोजगार और किसानों का जो मामला है, और महिलाओं का, जिस तरह लोग वहां संजीदगी से चुनावी घोषणाओं को ले रहे हैं, देखते हैं कि चुनावी नतीजा किस तरह इस पे इसका सामने आएगा। पूनम जी, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, धन्यवाद आपका।